نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دین و دنیا قرآن پاک کی روشنی میں اس میں سے آج ہم 23rd پارہ دیکھیں گے. اس سے پیچھے 22nd پارے میں ہم نے سورت یاسین کی ابتدائی آیات کو دیکھا تھا. آج یہ پارہ 22 آیت سورہ یاسین سے شروع ہوگا اور پھر اس میں چند خوبصورت صورتیں ہم دیکھیں گے. ایک ایک صورت کو پڑھتے اور سنتے وقت ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. پچھلے پارے کے جو ہوم ورک پوائنٹس تھے اس میں تقویٰ کا بہت کثرت سے تذکرہ ہے. دعائیں میرے ساتھ دہرا لیجئے تقویٰ کی, کیونکہ یہ علم کی محفل ہے, یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. چلیے دوسری بھی مانگیے. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہ کرے کہ دلوں میں تقویٰ بھر جائے. اللہ حکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات خاص طور پہ جب آپ قرآن پڑھنے کے دوران سنتے ہیں تو اپنے دل کو ضرور چیک کیا کریں کہ کیا میرا دل اس وقت حاضر ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دن میں ہر اذان ایک بار, یعنی یہاں تو ماشاءاللہ بہت جگہ سے آواز آتی ہے نا, ایک دفعہ خاموشی سے بیٹھ کے سننے کی عادت ڈالیں. آپ غیر محسوس طریقے سے نمازوں کے عادی ہونے لگیں گے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ہوگی, اور جو اصل چیز ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اذان میں جو بار بار اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور کلمہ شہادت جو ہے اس کی بار بار بات ہوتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اور یقین کریں کہ ہماری اذان اور نماز سیدھی ہو جائے تو ہمارے باقی کام بھی انشاءاللہ سیدھے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے انسان اپنی زندگی میں خیر کے ساتھ معاملات کرتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سورت احزاب میں ہم نے بناؤ سنگھار کر کے جاہلیت کے طریقوں کو جو اختیار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا. پھر بڑی پیاری آیت ہے 35, اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے دیکھیں بعد میں, کیسے پیاری سی لمبی لسٹ اللہ نے دے دی, نل مسلمین اول مسلمات, اور اسی طرح سے دوسرے جو خوبیاں تھیں. بہت ہی پروفاؤنڈ قسم کی آیات ہیں کہ جس کے بعد بندے کا دل کرتا ہے کہ میں ضرور اس پہ چیک لگاؤں کہ میرے اندر کون سی خوبی ہے اور کون سی نہیں. آیت 40 میں سورۃ الاحزاب میں پڑھا تھا, رسول اللہ و خاتم النبیین, اللہ کے رسول اور نبوت پہ مہر, یعنی بالکل آپ آخری نبی تھے, آپ کے بعد نہ کوئی آیا نہ آئے گا اور نہ کبھی کوئی اس کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ سبا میں عبد منیب ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 میں ذکر کی کثرت ہے, اذکر اللہ ذکرا کثیرا, تو آپ ایک دفعہ پڑھیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آیت نمبر 13 سورۃ سبا, وقلیل من عبادی الشکور, اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں کر دے جو کہ شکر گزار ہوں. اور سورۃ فاطر آیت 5, اللہ کے وعدوں کی بات اور شیطان کے وعدوں کو توڑنے کی بات ہے. پھر اسی طرح سے فاتح 28, یہ ہے اصل میں ایک عالم کی تعریف. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ عالم ہیں, مجھے عالمہ بننا ہے, تو عالمہ بننے کا جس جس کو شوق ہے وہ اس آیت کو ہائی لائٹ کرے. عالم کون ہے؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں. تو عالم کون؟ جو اللہ سے خشیت رکھے. اور آپ پتہ چل گیا خشیت کیا ہے؟ تقویٰ کا پانچواں درجہ, یعنی جب تقویٰ وہ کہ گناہ کرنے سے پہلے ہی بندہ پیچھے ہو جائے تو اس کے بعد پھر خشیت آتی ہے کہ میں نہیں کر سکتا بھئی یہ گناہ. من خشی الرحمن بالغیب, یہی وہی لفظ ہے جو سورہ یاسین میں بھی آتا ہے. پھر آیت 12 یاسین, ما قدموا و آثارہم, اور اس سے پیچھے سورہ یاسین آیت 6, لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. دعا کر لیجئے, سورہ صافات میں آتی ہے, ربی حبلی من الصالحین. کس کی دعا تھی یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کون سا بیٹا ملا اس کے بعد؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کی خوبیاں بھی دیکھیں گے ہم سورۃ صافات میں. تو چلیے بک میں سے ریڈ کرتے ہیں. اس پارے کے اندر جو بنیادی تھیم ہے وہ اخلاص. کیا لفظ ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اے کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. آپ با بی بو آ ای نانی, ٹھیک ہے؟ تو یا کوئی چیز آ ہوگی یا ای ہوگی یا او ہوگی. اخلاص, اگر آپ اس کو پڑھتے نا, یا پڑھیے اخلاص, یا پڑھیے اخلاص, یا پڑھیے اخلاص. اخلاص کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں اس لیے تصحیح کرا رہی ہوں کہ ہمارے اردو لینگویج کے ساتھ عربی کے میچ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہیں. تو تذکرہ سیریز میں اس پارے کو ہم دیکھیں گے اخلاص کی روشنی میں. وہ کیا ہے, کیسے ہے؟ مراد ہے اس سے اللہ کے لیے خالص ہونا, اور اس کا مطلب ہے بالکل خالص ہونا. مثلا ہم اپنی زندگی میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز کو خالص کر رہے ہوتے ہیں. عملی زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں ملیں گی. گھر کی صفائی میں بھی اصل میں گھر کو خالص کرنا ہوتا ہے. یہ نوٹ کیجئے. آپ دیکھیں صبح اٹھ کے جھاڑ پونچھ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھاتے ہیں نا. تو گھر خالص ہو رہا ہوتا ہے. کس چیز سے خالص ہو رہا ہوتا ہے؟ گندگی, مٹی, بیکار چیزوں سے, ٹھیک ہے؟ گھر کی گندگی کو دور کرنا ہوتا ہے. یعنی ہر بیکار چیز کو ادھر ادھر کر کے کارآمد چیز کو سامنے لے آتے ہیں. اس کی مثال ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب سونے کو بھٹی میں پکایا جاتا ہے تو اس وقت سونے کی گندگی دور ہو جاتی ہے اور خالص سونا حاصل ہوتا ہے. اخلاص کی کمی بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. نمازی جہنم میں چلے جائیں گے. ہائی لائٹ کیجیے, بولیے استغفر اللہ. نمازی جہنم میں چلے جائیں گے جب تک کہ ان کی نمازوں میں اخلاص نہیں ہوگا. ویل للمصلین الذینہم عن صلاتہم ساہون. چلیے اگلا جم نوٹ کریں. آزمائشوں کے بعد بندہ خالص ہوتا ہے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ بندہ خود ہی خالص ہو جائے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے, ون لکھ لیجیے. یہ آسان ہے. ایسا کرتے ہوئے اپنے دل کو ہر اس چیز سے بے نیاز کر دے جو چیز اس کی توجہ لے لے. حنیفیت والی کیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی اس پہ توجہ دے. ادھر ادھر نہیں دیکھنا, بالکل سیدھے چلتے جاؤ. جو بندہ خود اس کو کرتا ہے اور اس کام کو کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ مدد دیتی ہے وہ معرفت ہے, اللہ کو پہچاننا. ہم دنیا میں جس چیز کو صحیح طرح سے سمجھ چکے ہوتے ہیں اس کی ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سچ ہے کہ نہیں؟ خالص سونا کتنا مہنگا ہے. خریدتے ہیں نا. کیوں خریدتے ہیں سوچئے ذرا. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سونا ہے اور ایک مصنوعی چیز جس کو امیٹیشن کہتے ہیں, آرٹیفیشل کہتے ہیں. اس کی آدھی قیمت بھی ہوگی تو نہیں لیں گے, کیونکہ یہ تو بعد میں بکے گی ہی نہیں. بالکل اسی طرح سے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے کہ اتنی بڑی ذات, میرا مالک, میرا خالق, میرا رازق, میرا سب کچھ اس کے پاس جانا ہے, اسی کے پاس سے آئی ہوں, پھر تو وہ ہر چیز سے کٹ کر صرف اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اس کو اخلاص کہتے ہیں. اس بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ میری سب سے زیادہ قیمت کوئی لگائے گا تو اللہ لگائے گا. ہائی لائٹ کریں, وکان اللہ شاکرن علیما. پھر وہ اپنا وقت اللہ کو دیتا ہے, اپنا مال, اپنی صحت, اپنی جوانی, یعنی ہر چیز جو اس کو اللہ نے دی وہ دیتا جاتا ہے حتیٰ کہ خالص ہو جاتا ہے. دل جا رہا ہے خالص ہونے کو. دیکھیے صفائی تو سب کو اچھی لگتی ہے نا. پیور چیز تو سب کو اچھی لگتی ہے. اگر آپ کو کوئی آفر کرے کہ آپ کو فریش جوس پینا ہے یا چینی ملا پانی جوس کے نام پہ پینا ہے, کون سا لیں گے؟ فریش پئیں گے نا. یہ الگ بات ہے کہ آج گھر کے تازے کھانے کو چھوڑ کے پرانا فروزن اور پتہ نہیں کتنے دن کا پرانا کھانا لوگ کھانے کے عادی ہو گئے. لیکن عموماً دیکھیے کہ فطرت جو ہے نا وہ پیور چیز کو طلب کرتی ہے. آج سیب, کینو, مالٹا یہ بچوں کو دیں اور دوسری طرف چاکلیٹ دیجئے, کون سی چیز لے گا؟ چاکلیٹ لے گا. کھجور اور چاکلیٹ آفر کریں, بچہ کیا پکڑتا ہے؟ یہ ہماری فطرت کے مسخ ہونے کی ایک علامت ہے. تو کیا پتہ چلا؟ اپنے رب کی معرفت. اللہ کو پہچانتے جائیں گے, صاف ہوتے جائیں گے. اگلا سوال یہ کہ معرفت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تو نوٹ کیجئے, معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے. علم معرفت کے راستوں کو کھولتا ہے. آپ کسی چیز کو جانتے ہی نہیں تو آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جتنا علم زندگی میں آئے گا उतनी अल्लाह की पहचान ज़्यादा आएगी। अल्लाह की पहचान आएगी, बंदा अपने आप को खालिस करेगा। ये बात एक छोटी सी मिसाल से हम शायद समझ जाएं। किसी को आपने शादी पे गिफ्ट देना है, एक वो शादी है जो आपके ख़ानदान में गरीब घराने में, हो सकता है कि घर में बड़ी अच्छी चीज़ रखी हो, आप कहते चलो ये दे देते हैं काम आ जाएगी। जैसा बंदा होता है वैसा गिफ्ट। अब आप तसव्वुर करें, आपको किसी वज़ीर के घर में शादी के मौके पर जाना है, क्या लेकर जाते हैं? कोशिश करते हैं ना कि इसकी हस्बे हसीयत चीज़ लेकर जाए। 10 जावियों से देखते हैं कि ये ठीक है, जब वो डब्बा खोलेगा तो इसको अफसोस तो नहीं होगा। बस इसी को बढ़ा लीजिए। जिस तरह दुनिया में किसी भी बड़े इंसान को कुछ पेश करते वक्त बहुत हसास और मुख्तात होते हैं, कोई टूटी हुई चीज़ नहीं देते, इस्तेमाल शुदा नहीं देते, पूरी देते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें अल्लाह के लिए आती हैं तो इसको अखलास कहते हैं। अगला जुमला बड़ा बड़ा करके लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, अभी हाईलाइट कर लें। मैंने आधा नहीं देना अल्लाह को, पूरा देना है। आप लेते हैं आधी चीज़, आपको कोई गिफ्ट देर पता चला कि मुकम्मल नहीं, अधूरा डिनर सेट है तो लेंगे, किसी का आधा खाया हुआ सेब लेंगे, नहीं लेंगे। तो इसी तरह ये एहसास कि मैंने अपना आप रब को पेश करना है, अब आप इसको अपने दीन के हर अमल पर लाएं। नमाज कहाँ जा रही है? ये बादशाह के पास जा रही है, कैसी होगी? टूटी हुई, रूखी हुई, फीकी सी, अकल कहीं, सोच कहीं, ऐसी नमाज जाएगी अल्लाह के पास? नहीं। आप नमाज का जो गिफ्ट पैक बनाएंगे, दिन में 5 बार पूरे एहसास से बनाएंगे, इसमें कुछ हिस्सा चोरी किया हुआ ना हो, किसी गैर को पता ना चल जाए, इसके लिए कोई दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, शोहरत ना हो। आप इस नमाज को इसकी हिफाजत करते हुए पूरी तवज्जो के साथ दिलो दिमाग की हजूरी से अल्लाह ताला के सामने पेश कर देंगे। ये है आपका इखलास। नीयत और अमल का एक जगह जमा होना ये इखलास होता है। नीयत कुछ और हो और काम कुछ और हो, ये निफाक होता है। नोट कीजिए अगला जुमला, निफाक का मुतजात अखलास है, और सबसे मुश्किल काम अखलास है। इस बारे में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कैसे बंदा मुखलिस बनता है और फिर मुखलस बन जाता है। इसकी बुनियाद और असल जो है वो नीयत है। अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है नवात, नवात गुठली को कहते हैं, यानी बीज। जो बीज होता है उससे वही पौधा उगता है, जैसी नीयत होगी वैसे ही अमल होंगे। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसी मुराद, इन्नमल आमालु बिन्नियात। दो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों की नीयत छुपी हुई है, जैसे गुठली छुपी हुई होती है, तो कितनों को बात समझ आ गई है? बहुत मुश्किल है। हमारे असलाफ कहा करते थे कि इल्म तो एक बार में लिया, और बार बार हम उस्ताद के पास और इल्म की महफिलों में जाते थे इखलास लेने के लिए, और कहा करते थे कि इल्म लेने में इतनी मुश्किल नहीं हुई जो इखलास लेने में हुई। शुरू का इल्म कुरकुरा कागज़, आप जब नई अपनी बुक्स खोल कर कड़कड़ करते हैं, आपको नहीं समझ आती, आवाज़ आ रही होती है, नई कॉपी चट चट करती है, लेकिन कसरत इस्तेमाल से जब वो कॉपी बार बार खुलती है तो वो नरम होती है। नया कपड़ा बड़ा सख्त होता है, कड़क देखने वालों को अच्छा लगता है, पहनने वाले को चुभता है। पुराना कपड़ा देखने वालों को शायद अच्छा ना लगे, नहीं लगता तो ना लगे, पहनने वाले को बड़ा मज़ा आता है कि ये मेरे मिजाज के मुताबिक है। तो नया नया इल्म, थोड़ा इल्म उछलता है, और ये मैं दिन रात देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट स्टेशंस, डिफरेंट लोग, काम करने के शौकीन, गाइडलाइन लेने के शौकीन, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ना कभी कभी अकड़ रहे होते हैं। मैं कुछ नहीं कहती उनको, मैं कहती हूँ नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह लाइन पे आ रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। मैं वो काम कर ही नहीं सकती जो इल्म ने करना है, चूल्हे पे चढ़ा दें दाल गल ही जाएगी। इल्म का पानी दिल को दे दें, एक वक्त आता है आपको अपनी तारीफ से घबराहट होती है, वल्लाही उलझन आती है। एक वक्त वो भी गुजर चुका होता है, बंदा अपनी तारीफ सुनने के लिए दो बोल कोई कह दे क्या अच्छे काम आप करती हैं, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं हम सिर्फ इस जुमले के लिए। तो इल्म आपको लोगों से बेनियाज कर देगा। बड़े से बड़े मिनिस्टर और सफीर और मशीर भी आपके सामने आए और आपकी तारीफ करे तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह की नज़रों में मैं कैसी हूँ। तो अखलास क्या है? बंदा अल्लाह की नज़रों में जचना चाहता है। इतना खूबसूरत ये टॉपिक है, जहाँ मैंने बैठ के पढ़ाया था, मेरी अपनी भी ये कैफियत होती है, लेकिन जो फीलिंग्स और जो पढ़ते वैसे लगता है काटो तो बदन में लहू नहीं है, ऐसे मुजरिम बने होते हैं हम, हाय ऐसे ये तो कमी है मेरे में, ये तो कमी है, यानी फिर वो डीप डाउन क्लीनिंग होने लगती है। शीशे में देखने को मुंह नहीं दिल करता कि पता नहीं अंदर से क्या निफाक और क्या फिस्क और हसद दिखता है। आप देखिए कि अभी भी माशाल्लाह 22 पारों में आपने 22 चीज़ें पढ़ी हैं ना, अक्सर जो थी वो नेगेटिविटी को निकालना था ना और पॉजिटिविटी डाल रही है। ड्यूल है, तज़किया, डबल एक्शन है, अच्छी चीज़ें डालो तो गंदी निकालो भी। आप परफ्यूम छिड़कें लेकिन यहाँ पड़ी हुई गंदगी ना उठाएं तो कमरा कभी खूबसूरत और खुशबूदार तो नहीं होगा ना। तो ये मेरा वजूद आपका एक ही जैसा है, हम सब सुबह उठते हैं तो अगर ब्रश ना करें तो हमें स्मेल आए अपने आप से, पसीना आएगा, हम सबको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तज़किया और बातनी इस्लाह आपके मेरे असर को बदल देगी। अल्लाह ताला आपका मेरा पूरे का पूरा तज़किया करवा दे। कोई काम अगर ज़हनी तैयारी के बगैर करने लग जाए तो वो मज़ा नहीं आता। पारे के साथ देखिए, ये पारा सूरत यासीन की आयत 22 यानी 22 से शुरू होता है। वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैही तुरजऊन, और मुझे क्या हो गया कि मैं उस ज़ात की इबादत ना करूं जिसने मुझको पैदा किया और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। हबीब का जुमला है ये। इससे यहाँ से एक वाक्या शुरू होता है। कहते हैं कि एक बस्ती थी जहाँ अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन रसूलों को भेजा, यके बदीगरे यानी वन बाय वन। वो रसूल आते रहे लेकिन कौमें इनको झुटलाती रहीं। ये लोगों का आम तौर पर मामला रहता है। रसूलों ने आने का हक अदा कर दिया, कौमों ने झुटलाने का हक अदा कर दिया, हर एक अपने काम में लगा हुआ है। और याद रखिए कि रसूल तो किसी को कुछ नहीं कहते, क्यों लोग झुटलाते हैं? तो उसकी वजह क्या है कि जो लोग ख्वाहिशों की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको इनकी ख्वाहिशों से दूर कर दे। इंसान को चीज़ें ही प्यारी नहीं होती, इनकी ख्वाहिश भी बड़ी प्यारी होती है। कैसे भला? आप देखिए कि दिन रात हम लोगों के जाने की खबरें सुनते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक हो ना हो, लेकिन मुसलमान के मुसलमान पे 6 हक हैं। तो उसमें से एक हक ये भी है कि जब वो मरता है तो उसके जनाजे में जाए, और ख़ास तौर पे जैसे कि हम उनके लिए दुआ करें। आज हम किसी के लिए करेंगे, कल कोई हमारे लिए करेगा। और अब इसके बाद वापस अपने ऊपर आ जाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी ज़िंदा। एक दफ़ा जो गया उस दरवाज़े से वो वापस नहीं आया आज तक। ये ज़िंदगी ओनली चांस है, चांस भी नहीं कहना चाहिए, ओनली ऑप्शन है। ज़िंदगी से मौत का फासला एक हिचकी का है, एक सांस आने और ना आने के बीच का है, एक लुकमा गले में फंसे और निकल जाए, ये है। तो ये सब पता चलता है ना तो फिर ख्वाहिशें कम हो जाती हैं। तो हमें ख्वाहिशों की मोहब्बत से भी प्यार है, हमें कपड़ों की बातों में मज़ा आता है चाहे कपड़े खरीदें ना खरीदें, हमें खाने पकाने की तरकीबें अच्छी लग रही होती हैं, इंजॉय करते हैं, कभी लोगों को देखा करे गॉसिप करते वक्त, यही कुछ बातें होती हैं। तो यही मुराद है कि चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश प्यारी होती है। तो इन बस्ती वालों ने इन रसूलों को झुटलाया, अल्लाह ताला ने बाहर से मदद भेजी, क्योंकि जब दीन की बुनियाद पर लोग आपको झुटलाते हैं और आपके अंदर इखलास होता है तो अल्लाह गैब से मदद करते हैं। इसको हाईलाइट करें, अभी आपको नहीं समझ आएगा ये भी बता दूँ, क्योंकि अभी आप इस मरहले से गुजरे नहीं हैं, लेकिन बचपन की सुनी बातें आज फ़ायदा दे रही हैं ना। ये सारा कुरान जो आप और मैं पढ़ेंगे और हमारे सीनों में जाएगा तो वक्त के साथ साथ ये हमें पुख्ता करेगा। तो क्या पता चला कि जब अंदर इखलास हो और बाहर मुखालफत हो तो अल्लाह गैब से मदद भेजता है। कल वो फरिश्तों के ज़रिए होती थी और अबाबीलों से होती थी, आज भी होती है, कोई माने ना माने, वो निगाह ढूंढ कर देख लीजिए। आज के दौर में कई नामुमकिनात मुमकिन बनती दिखेंगी आपको, अगर आप सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे उस काम को शुरू करते हैं। मक्का वाले अल्लाह के नबी के बिल्कुल पास थे, क्या कहेंगे आप इसको, बिरादरी, कौम, ख़ानदान के लोग थे ना, नहीं माने, झुटला दिया, कत्ल तक की बातें करने लगे। अल्लाह ने मदीना वालों को भेज दिया अनसार बनाकर, इसको भी हाईलाइट कर लें। हमेशा एक मौका नहीं रहता, इफ़ यू विल नॉट यूज़ इट यू विल लूज़ इट। हम जिस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते ना वो खो जाती है। जो चीज़ें रोज़ इस्तेमाल होती हैं आपकी टिप्स पे होती हैं, इधर है, ये है छुरी, कांटा, चमची, और जो इस्तेमाल ना करे बहुत अरसा तो वो पता नहीं किधर कोने खुदरे में डाल देते हैं। तो ये जो मौका मिलता है ना हमें कुरान सीखने का, अमर बिल मारूफ और नहि अनिल मुनकर का हिस्सा बनने का, ये हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, उनका हमेशा बन जाएगा जो इस मौके की पहले से उम्मीद में मुंतज़िर और बिल्कुल कह लीजिए कि मुअद्दब बन के खड़े थे और पहली पुकार पे समय ना वाताना। لبیک اللہم لبیک. تو دو باتیں دیکھی ہیں آپ نے اگر ابھی غور کی ہو تو. پہلی بات کیا ہے کہ اندر اخلاص ہو باہر مخالفت ہو تو غیب سے مدد آتی ہے. اور دوسری بات ہم نے سیکھی کہ جتنا دل میں اخلاص اتنی بڑی مدد. اللہ کے راستے میں نبیوں کو بے انتہا تکلیفیں پہنچی لیکن انجام بالخیر رہا. کسی بھی چیز کو دیکھنا تو پرکھ لیجئے اس کا اختتام کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں رک کر چند جملے میں بھی بول دوں. اختتام, اینڈ ویل از گڈ ویل. انگلش میں یہ جملہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے, الاعمال بالخواتیم, ہر چیز اپنے انجام کے اعتبار سے ہوگی. بڑی آسان بات ہے, اردو میں ہم خواتین کی مثال میں سارا دن کچن میں کھڑی رہیں, لوگوں کو کیا لگے؟ وہ تو دیکھیں گے کہ اینڈ پہ دسترخوان پہ کیا آیا, جلی ہوئی روٹیاں, ڈھیلے چاول یا کچھ بد ذائقہ سا کھانا. ان کو کیا لگے آپ 10 گھنٹے اور کھڑی رہتی, بات سمجھ گیا؟ اور آپ 2 گھنٹے میں بہترین صاف ستھرا کھانا پکا کر رکھ دیں, لوگ آپ کے کھانے سے محفوظ ہوں گے. ہمیشہ یاد رکھیے, جملہ لکھیے آپ سب کے لیے, کسی نیکی کے آغاز میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اصل کامیاب وہ ہیں جو اس کے اینڈ تک ہوں. قرآن شروع ہوتا ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں, بور کی طرح لگتے ہیں, آخری پاروں تک پہنچنے میں جتنوں کو اللہ جماتا ہے بس وہ جمتے ہیں, باقی جھڑ جاتے ہیں. کیوں جھڑ جاتے ہیں بلا؟ کیونکہ اخلاص نہیں ہوتا. اس قرآن کو کبھی اس طرح نہ پکڑے جیسے یہ میں نے ٹیشو پیپر پکڑا اس وقت, یاد ہی نہیں رہے گا کہاں رکھ کے بھول جاؤں گی. اس کو ایسے پکڑیے جیسے یہ 5000 روپے کا نوٹ ہے, کم از کم یہ تو سمجھیں. بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے, جتنی قیمتی چیز ملتی ہے نا اتنے اس کے چوری ہونے کا, گمنے کا ڈر ہوتا ہے. آپ کو جابس آفر ہو جائیں گی, دیکھ لیجئے گا, رشتے آ جائیں گے. آپ کورس شروع تو کریں پھر دیکھیں ہوتا کیا. ڈے ون پہ جو سبیل الجنہ میں میں نے ناروے میں کرائی تھی نا, ابھی بھی کراتے ہیں, وہ استقامت کی دعائیں کرائی تھیں کہ اللہ میرے قدم جما دے. بور بہت لگتا ہے, عام جب سیزن ہوتا ہے کتنا بور لگتا ہے, ساتھ ہی آندھیاں شروع, تو آندھیوں میں کچا بور جھڑ جاتا ہے. تو جو اینڈ تک کسی کام میں رہیں گے نا وہ چلیں گے. مجھے کسی ایک اسکول کا تعارف کروایا جا رہا تھا, میں نے خود بھی قریب سے دیکھا, لوگ اپنی یادوں میں تھے, یہ اسکول ہم نے بنایا, ہمیں چاہیے تھا, ہم 10 لوگ تھے, پھر مل کے کسی ایک کے گھر کے بیسمنٹ میں کلاسیں شروع کر دیں, اللہ نے مدد کر دی, یہ ہوا وٹ ایور, ہمسایہ نے شکایت کر دی, وہ کلاس بند ہوئی, پھر ہم نے کہا ہمیں کچھ کرنا ہے, پھر ہم نے مل کر ایک جگہ ڈھونڈی, جگہ لی, پھر 2 سال 3 کے بعد آپس میں تھوڑے جھگڑے شروع ہو گئے, مینجمنٹ کے پرابلمز ہو گئے, پرسنالٹیز کلیشز شروع ہو گئے, پھر ایک چلا گیا, پھر دوسرا چلا گیا, پھر تیسرا چلا گیا, اور اب بس ایک میں ہی ہوں, میں ہی ناکامی ہے یہ. جس آرگنائزیشن کو بنانے والے اینڈ تک ساتھ رہتے ہیں نا, وہ کبھی رلتی نہیں ہے. کم از کم اس 1-1.5 مہینے میں جو بھی رمضان کے بعد یا اس کے قریب تک جو ٹریولز ہوئے ہیں نا ہمارے, اور ویسے بھی ویب میسیجز کے تھرو, خوفناک جملہ جو مجھے سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا ایک اسکول, مدرسہ, ادارہ, کورسز بھی شروع کی, پھر اب ختم ہو گیا, اب چل نہیں رہا, لوگ نہیں آ رہے, کہیں ٹیچر نہیں ہے. ایک سسٹر تھی پتہ نہیں کہاں, قرآن پڑھا ہوا ہے, کہتی میں نے شروع کیا, مجھے بڑا شوق ہے پڑھنے کا, پھر وہ میری ٹیچر کی شادی ہو گئی تو میرا قرآن وہی رہ گیا. میں نے کہا قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں بس یہی کافی ہے. یاد رکھیے ایک فرد کے ساتھ آپ کام کریں گے نا تو ایسے ہی ہوگا, بندہ کے کل من علیہ فان. جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم رہیں نہ رہیں چہرے بدلتے جائیں گے, کام ہوتا رہے گا. اخلاص کے ساتھ کی ہوئی کوششوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. میں نے بڑا پیارا آرٹیکل پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, مائیکل ہارٹ کا نام آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا نا, دی ہنڈرڈز بک کا لکھاری. تو اس نے اللہ کے نبی کو نمبر 1 پہ کیا, خود کرسچن ہے لیکن اس نے دنیا کی ٹاپ 100 پرسنالٹیز کو گیدر کیا اپنی بک میں, اور حضرت عیسیٰ کو اس نے نمبر 4 پہ رکھا ہے. خود ڈرتا تھا, کہتا تھا جس دن میری یہ بک ریلیز ہوگی نا تو کرسچینٹی کی دنیا میں ایک طوفان برپا ہو جائے گا, کیونکہ ہر ایک اپنے مذہبی رہنما سے لگاؤ ہوتا ہے. تو خیر لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا, وائے تمہیں کیا ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ اس نے کہا مجھے اتنا پتا ہے کہ 1400 سال پہلے اس شخص نے ایک صحرا جس کے ارد گرد ان پڑھ لوگ, بدوی ٹائپ چند لوگ تھے, اور اس دن کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ قول لا الہ الا اللہ, یعنی گواہی دی تھی اور ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی تھی. آج کی زبان میں نہ سوشل میڈیا تھا, نہ فلاں 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 تھا. آج اسی شخص کی آواز پہ لبیک کہنے والے تقریباً 2 بلین لوگ ہیں. اور دوسری بات, जो बहुत ही मुझे उसकी खूबसूरत लगी, कहने लगा कि 1400 साल से उसके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, अगर वो झूठ पे होता तो एक झूठ 1400 साल तक नहीं चलता, झूठ के तो पाँव ही नहीं होते। और जिस शख्स के नाम पे 2 बिलियन लोग जान देने को तैयार हैं, आप और मैं उसको कामयाब क्यों ना कहें। तो बात रिसोर्सेज की नहीं है, मैं तो लोगों के रिसोर्सेज रुलते देखे हैं। यकीन करें, दीन की इमारतों को दीमक लगी देख के मेरा जो दिल कटता है कि अल्लाह जिन्होंने इस पे खर्च किया उनका क्या बनेगा। तो इखलास बहुत ज़रूरी है, सोच के काम करें, मत दें वक्त, दें तो ऑनर समझ कर दें, रोते हुए कभी ना इधर आए, क्या करो मजबूरी है, ओके जो कह दिया, नहीं छुट्टी कर लें आप, और पैसा देने ना उसको इतर लगा के दें, खुशबू अल्लाह के हाथों में जाएगा। हज़रत आयशा खुशबू लगाती थी दिरहम को, किसी ने कहा ये क्यों, कहा मैंने अल्लाह के नबी से सुना है कि जो अल्लाह के नाम पे दिया जाता है ना, तो उस बंदे या उस चीज़ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में पड़ता है, तो मैं कहती हूँ इसमें से खुशबू है, ये इखलास की खुशबू होती है। हम पुराना ढूंढ के नोट डालते हैं कि चलो मस्जिद में ही जाना है ना, ये चंदे में ही जाना है ना, सारा चेंज डाल दो, तो बहुत बड़ी बातें हैं। यानी ये बातें अभी आपके लेवल से भी ऊंची कर रही हूँ मैं, मुझे अंदाज़ा है इसका। लेकिन अल्लाह से इखलास मांगे, एक खालिस चीज़ आपको मिल जाए, अल्लाह ऐसी बढ़ोतरी देगा कि आप पंखे मलेंगे, और बड़ी बड़ी दीमक लगी नेकियां जमा होती हैं लोगों की, गट्ठड़ बन जाते हैं, कुछ अरसे बाद किसी को ज़ोंक लग गई तो किसी को दीमक लग गई, बस अल्लाह से इखलास मांगिए। कंटिन्यू करते हैं पारे के साथ, देखिए अल्लाह ने देखिए उस कौम पे कैसे रहम किया, ज़रा सा उसके किस्से को भी देख लेते हैं। 3 नबियों को झुटला चुकी थी कौम, बेकदर थी, खैर हुआ क्या, लोगों ने झुटलाना शुरू कर दिया और नुकसान पहुंचाते रहे। इतने में एक मर्द मोमिन आता है, रिवायत में आता है कि इसका नाम हबीब था, इसने आकर लोगों को नसीहत की, वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फतरनी, तुम्हें क्या हो गया, ये रसूल तुमसे क्या मांग रहे हैं, आगे आप पढ़ेंगे, मा सलुकुम अलैहि मिन अजर, तुमसे कोई अजर तो मांगते नहीं है, तुम्हें इन पे शक क्यों है, ये तुमसे कुछ लेते हैं, ये तो देने आए हैं, लेने तो नहीं आए, इनको लेना था तो तुम्हारे ही पास आना था। यानी ये टोन थी उस शख्स की, ये बिल्कुल इब्तदाई रुकू के अंदर आप देखेंगे तो ये सारे जुमले मिलेंगे जो इस वक्त बोले जा रहे हैं, कि ये तुमसे कुछ नहीं लेना चाहते, यही देख लो कितना बड़ा इखलास है, कि लेना हो तो बंदा उधर जाए जिधर से पैसा मिलता है। आप देखिए कि रसूलों की ये भी एक खूबी देखी गई कि वो बादशाहों के दरबारों में नहीं खड़े हुए, उनके पास जो था वो उसके ऊपर खड़े हो गए। एक जुमला लिख लें, इखलास से बड़ी करेंसी कोई नहीं है। मैं अगर आपसे करेंसी की लैंग्वेज में बात करूं कि आज की दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है, आपको लगता है डॉलर नहीं है, डॉलर से बहुत बड़ी बड़ी करेंसीज हैं, पाउंड उससे बड़ा है, आप कुवैती रियाल देखिए उससे बड़ा है, ओमान का रियाल देखिए, लेकिन ये सब छोटे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग और जिसके कन्वर्शन में पता नहीं कितने नोट चले जाएँ, वो इखलास है। इखलास से ज़रब दे दें अपने नोटों को, तो अल्लाह के नबी ने एक मुट्ठी भर खजूरें पूरे लश्कर के सामान पे फैला दी थी, क्योंकि उसमें इखलास था। सारी रात मेहनत करके, मजदूरी करके, एक एक खजूर जमा करके सहाबी लाए थे। तो याद रखिए कि मुखलिस लोगों की कदर भी बड़ी करनी चाहिए, आप एक मुखलिस को खोते हैं ना आपकी सारी बरकत ही चली जाती है। तो रसूल मुखलिस होते थे और मुखलिस भी होते थे। इस शख्स ने आके लोगों को समझाया कि ये तुमसे क्या मांगते हैं, तुमसे क्या ले रहे हैं, अल्लाह ही की तरफ तो बुला रहे हैं। लेकिन लोगों को ये बात अच्छी ना लगी, लोग कभी भी खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते, ये भी हाईलाइट है। बच्चे कम पसंद करते हैं माँ की खैर ख्वाही को और बाप की, उनको तो चॉकलेट्स खानी है, उनको तो कोक चाहिए, माँ कहती है दूध पियो, है ना फ़र्क। तो अच्छे लोग, अच्छी बात की नसीहत करने वाले लोग अक्सर लोगों को अच्छे नहीं लगते। लोगों ने इस हबीब को मार दिया, जान तक ले ली, हालांकि देखे उसका कुछ ज़ाती तो इनसे झगड़ा नहीं था ना। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा तुम हमें तंग करते हो, तुम हमारे रंग में भंग डालते हो, हम मज़े में जी रहे थे, तुम्हारी वजह से हमारी नहुसत शुरू हो गई। आज भी लोग यकीन करें मौलवी से जितने भी लतीफ़े बनाते हैं ना, वो इसी जुमले के अंदर आते हैं, एक ये तो ना खुश रहते हैं ना रहने देते, ये किसी को खाता नहीं देख सकते, देखी जाएगी। यानी इनको दीनदार लोग नाउस बिला नहुसत ज़्यादा लगते हैं। अब तो गुनाह करते हुए भी मज़ा नहीं आता, खौफ ही आता है, ये भी एक कैफियत होती है बंदे की कभी। उन्होंने इस शख्स को मार दिया, इस शख्स के दिल में खैर ख्वाही बड़ी थी, और मरने के बाद इसके साथ क्या हुआ है 25-27 में है। कहते हैं कि जब ये मरा तो अल्लाह ने इसको जन्नत दे दी, जब इसने जन्नत देखी इतनी प्यारी तो कहने लगा अल्लाह ताला मेरी कौम ने तो मुझे झूठा समझ कर मारा है, किसी तरह इनको ये पता चल जाए कि मैं झूठा नहीं हूँ। मैं हक पर था, शायद वो बाद में इस चीज़ की तरफ आ जाए जिस पर मैं इनको बुला रहा था। आपको उसकी तड़प महसूस हुई है? अल्लाह के नबी ने कहा, नसख कौमहू हय्यम व मैयतन, इस शख्स ने अपनी कौम की खैर ख्वाही की जीते जी भी और मरने के भी बाद। देखिए ये होता है मोमिन, उसको ये नहीं परवाह होती कि मेरे से जुड़ो, वो कहता है जो बात कह रहा हूँ उसको मान के अपनी आखिरत बना लो। तो इसने कहा कि शायद उनको गलत फहमी हो गई है कि मैं झूठ पे हूँ, मैं सही नहीं हूँ, तो चलो अल्लाह ताला मेरा अच्छा इंजाम दिखा के उनको बता दे कि मैं हक पे हूँ। अब अल्लाह ताला ने इसके अमल को दिखाने के लिए आयतें पेश कर दी कि ये वो शख्स था जिसने जीते जी भी अपनी कौम की खैरख्वाही की और मरने के बाद भी खैरख्वाह बन गया। सच्चा मोमिन यही होता है, अखलास के साथ काम करने पर थोड़ी सी बात करें तो इसमें बहुत ही खूबसूरत नुक्ता मिलता है। किसी को अच्छी बात कहना, इसका मुहर्रक यानी मोटिवेशन या इसके करने से जो फ़ायदा होता है वो ये है कि वो बंदा आग से बच जाए। इसको हाईलाइट करें। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, चले मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एक क्या है कि मैंने आपको इल्म देना है तो मेरे अंदर बढ़ाई आएगी कि अच्छा मेरे पास है तभी तो आपको देने आई हूँ। दूसरा ये कि मैंने सवाब लेना है, दूसरी वजह ये होती है ना, तो मेरा लालच है इसमें। लोग इसलिए ज़्यादा कस्टमर्स को बुलाते हैं कि चीज़ बिके तो पैसे आएँ। मैं इस नीयत से बुलाऊं कि आप ज़्यादा आएँ तो मेरा सवाब बढ़े, ये भी खुदगर्जी होगी। सिर्फ एक एक नुक्ता आपको इस रास्ते की सारी मुशक्क़तों और कुर्बानियों और हिजरतों पे माइल करता है कि आप लोगों के साथ मुखलस बन के खैर ख्वाते कि ये बच जाए। आखिरी हद तक आप कोशिश करते हैं कि इसको मैंने अखलास की गोली घोल के पिलानी है, इसको नमाजें सिखानी है, इसका अकीदा ठीक करना है, इसके शिरक से इसको बचाना है। और ये सच्चे मोमिन के सिवा कोई नहीं कर सकता। सर घर में हम बात करें ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में लोग किसी को तबलीग क्यों नहीं करते। मैंने कहा किसको? कहते हैं सड़कों पर लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, उनको आकर क्यों नहीं मुसलमान भाई मना करते? लोग बैगिंग भीख मांग रहे हैं, लोग इनको क्यों नहीं कुछ कहते? लोग शिर्क करते हैं, क्यों नहीं कहते? इतनी गर्मी में चंद दिन पहले नीचे खड़े हो गए, मैं पूछूं किधर हैं किधर हैं, बाद में आए तो पता चला नीचे खड़े हैं, रात जाते जो भी लोग गुजर रहे थे तो उनसे ये बात कर रहे थे, और वही किसी से कोई बात कोई किसी से। तो मैं ये सोच रही थी कि ये इल्म की डिग्रियों से नहीं आता, ये यहाँ बैज ऑफ ऑनर लगाने और कोई नाम के साथ शेख का फतवा लगाने से नहीं बातें आती। एक बूढ़ी औरत सामान उठाकर जा रही थी, कहा मैं तुम्हारी चीज़ें छोड़ूं, अफसोस है मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर सका। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि असली नेकियों और नकली में बड़ा फ़र्क होता है। वो कहते हैं ना नक्कालों से होशियार, आज दीन में भी बड़ी नक्ल है। आज अगर हम दिल से बोलने लग जाए ना तो हमारे मुसलमान भाई बहनों के दिल सिर्फ जुमे के एक खुतबे से बदल जाएँ, सिर्फ एक जुमे से बदल जाएँ। और जब भी जुमा पढ़ के आते हैं मेरे हस्बैंड तो मेरा और उनका जो कॉन्वर्सेशन लेवल है वो यही होता है, आज क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह सभी बहुत अच्छी बातें करते होंगे, लेकिन ये एक अलग मौजू है। सिर्फ हमारी मस्जिदों के खुतबे, ये कुरान और ये हदीस और इल्म की बातें, बाकी छोड़ो। जैसे औरतें सीधी हो जाती हैं ना कुरान पढ़ के, मर्द भी हो सकते हैं। मर्दों को तो अल्लाह ने इतना प्यारा पैकेज दिया है। तो याद रखिएगा कि अखलास आपको बेकार एक जुमला नहीं बोलने देता। आप बचाना चाह रही हैं किसी को तो आप उससे कोई तनकीदी बातें करेंगे, आप उसको कोई ऐसी बातों में उलझाएंगे जिससे उम्मत में शोर पैदा हो, ताफुन पैदा हो। तो ये बातें हम सीख रहे हैं आज अखलास की। ये टॉपिक बड़ा रकीक है, मैं जितनी भी कोशिश करूँ ना इसको ज़रा सा डाइल्यूट करके दूँ फिर कहीं ना कहीं जुमला इधर उधर हो रहा है। मुझे अंदाज़ा है हमारे अंदर अखलास आ जाए उम्मत सीधी हो जाए। तो इस शख्स ने मरने के बाद भी ये ख्वाहिश की कि अल्लाह चलो मेरी तबलीग से तो नहीं बदले ना, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। मेरी दावतों, मेरी स्पीचेस, मेरे दरसों, मेरी दरूस, मेरे खुतबों, इनसे तो नहीं ये लोग बदले ना, मेरी मौत को देखकर मेरा खूबसूरत इंजाम देख के बदल जाएं। इससे भी ज़्यादा कोई मुखलस होगा? इससे भी बड़ा कोई वेल विशर या सिंसियर होगा? माँ को बच्चे के लिए तड़प है कि ये दूध पिए, बच्चा नहीं पीता। बच्चे जब बड़े होने वाले होते हैं और स्पेशली फीडर छोड़ दें जब, नहीं पीते। कितने माएँ जतन करती हैं, कभी दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के दे रही हैं, कभी चॉकलेट डाल रही हैं, क्यों किसी बहाने इनके अंदर दूध चला जाए, कभी मिल्कशेक बनाती हैं। आप भी लोगों को दीजिए, ये आपकी बातें नहीं ले रहे, आप उसके अंदर अच्छे तरीके से पेश कीजिए। खुरदरी जुबानों और अपने कद से 10 गुना ऊंची आवाज़ों से तो दीन नहीं आता। असल दीन वो जो हल्की बारिश की तरह दिलों में चला जाए। और हमारे असलाफ कहते हैं कि सहाबा कराम यानी नबी सल्लम के साथ जो ज़ेर तरबियत लोग थे उनमें ये खूबी थी कि उनके अंदर कशिश थी, लोग उनको देखकर उनमें अट्रैक्शन फील करते थे। एक वाक्य पढ़ रही थी तो उसमें एक सहाबी के बारे में था कि किसी को पता नहीं था कि ये सहाबी है, लेकिन मस्जिद में दाखिल हुए तो सब में उनको एक नौजवान बड़े ही खूबसूरत लगा। और किस्सा मुख्तसर, उसकी पर्सनल ही हाइजीन और खूबसूरती और उसका सोज देखकर कहने लगा कि ये बंदा सारों में से फ़र्क है। और एंड पे पता चला कि ये सहाबी रसूल है। यानी ये वो दौर था जब सहाबा का दौर पूरा हो रहा था, तो कोई इक्का दुक्का बचा खुचा बंदा उस दौर का था। ये मांगिए अल्लाह से, आपके अंदर कशिश दिखे लोगों को, रिएक्शन ना दिखे कि लोग आपको देख के दूसरी तरफ चल पड़े कि आप इन्होंने पता नहीं चंदा ही ना मांग लें हमसे, और ये आके हमारे ऊपर तनकीद ही ना कर दें। तो इस शख्स की ये बात, ये आग से बचे, इसमें फिर कोई जाती लालच होता ही नहीं है। और अखलास के साथ जब कोई काम करते हैं ना आप, तो अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला इसके अंदर असर भी डालता है। बातों में तासीर कैसे, असर कब आता है? अल्लाह डालता है। दवा तो सारी खाते हैं, किसी को दवा फ़ायदा कर देती है और किसी को रिएक्शन हो जाता है। पेंसिलिन के इंजेक्शन के बारे में कहते हैं ना, किसी को उससे सेहत मिलती है, ठीक हो जाता है, और किसी को उससे बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है। तो अल्लाह से तासीर मांगें, और तासीर के लिए फिर आपको इख़लास देना पड़ेगा।